نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مال الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد بزرگان دین نے تصوف کی جو ایک تعریف کی ہے فرماتے ہیں کہ تصوف جو حقیقت میں اللہ کی جستجو اللہ کی معرفت اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا راستہ ہے. ان تمام معاملات میں جب اخلاص سے کوشش کی جائے تو اس کوشش کا نام جو ہے وہ تصوف ہے. ہم سب طالب علم ہیں, میں بھی اور آپ بھی الحمدللہ اس کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور ہم نے اس راستے کو اللہ کے کرم سے اختیار کیا ہے جس کی تعریف میں نے بھی آپ کے سامنے کی, تو اس کا نام تصوف ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی راستے کو فرض عین فرماتے ہیں, فرض بھی نہیں بلکہ فرض عین فرمایا ہے. ظاہر ہے یہ سب چیزیں جو ہیں فرض ہی ہیں, اللہ کی محبت حاصل کرنا, اللہ کی معرفت حاصل کرنا, اللہ کے اطاعت کہتے یہ کوشش اور جہد کرنا, یہ سب فرض ہیں. جب یہ سب فرض ہیں تو ان تمام کو حاصل کرنے کا جو راستہ ہے وہ بھی فرض عین ہے اور وہ تصوف ہے. تو یہ کوئی من گھڑت چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک دین کا ایک حصہ ہے, بہت اہم حصہ ہے. اس کے اندر جو راستے میں سب سے اہم چیز ہے پانے کے لیے, یہ بہت ہی اہم چیز ہے, جس کے بغیر راستہ سٹارٹ نہیں ہوتا, اور وہ ایک ایسا مرکز ہے جس کے ذریعے سے انسان اس راستے میں کامیاب ہوتا ہے. وہ کیا چیز ہے, یہ میں سبق دہرا رہا ہوں اپنا تاکہ ہم یاد رکھیں, ان باتوں کو کمزور بھی ہو جاتے ہیں ہم لوگ کو بھی, تو اس پہ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں الحمدللہ, تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. بارہ باتیں ہوئی ہوں گی لیکن دوبارہ ان باتوں کو میں عرض کر رہا ہوں اپنی تقویت کے لیے, کیونکہ نفس, ہمارے حضرت فرماتے تھے رحم اللہ کہ نفس اور شیطان یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اس راستے میں چلنے ہی نہیں دیتے آدمی کو, اور سارے خطرات موجود ہوتے ہیں ان کی وجہ سے, کیونکہ اللہ نے ان کو بہت طاقت دی ہوئی ہے. تیسرا یہ مجالس جو ہیں جس میں ہم بیٹھتے ہیں کچھ دیر, اسی غرض سے عقائد سے منعقد کی جاتی ہیں تاکہ ان باتوں کو دہرائیں اور ہم اس راستے پہ چلتے رہیں الحمدللہ, نفس و شیطان کی کسی چکر میں انسان نہ آئے. تو اس میں سب سے اہم اور ضروری جو چیز ہے جس سے تصوف کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے ابد سے لے کے انتہا تک, وہ کام آتی ہے اس راستے میں, بلکہ کام نہیں بلکہ وہ ضروری ہے, اس میں اس کے بغیر تو کام نہیں بنتا, وہ ہے کسی اللہ والے کی صحبت, کمپنی آف شیخ کہا جاتا ہے اس کو. وہ اتنے مفید ہے کہ اس کے بارے میں بہت بڑے عارف کا قول ہے, یک زمانہ صحبت باولیا بہتر ست سالہ عبادت بے ریا. یہ بڑا معروف قول ہے جو تصوف میں پیش کیا جاتا ہے صحبت کی غرض سے, कि भाई ये इतनी बड़ी चीज़ है सोबत, इसका इतना ऐसा असर है, ऐसा तासुर है किसी अल्लाह वाले की सोबत में बैठने का, और ये किसने पैदा किया है, ये कोई मशीन तो है नहीं, ना कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे चीज़ पैदा कर ली जाए, नहीं, जिसने कायनात को बनाया, जिसने पानी में असर रखा, जिसने बर्फ़ को ठंडा किया, आग को गर्म किया, फूल में खुशबू रखी और आसमानों से बादल बरसाए, समुद्र के पानी को खारी किया, कुएं के पानी को मीठा किया, कोई पानी आधा कहाँ मीठा होता है आधा कड़वा होता है, इस सब में तासीर करने वाले कौन है, अल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ। तो ये जो तासीर पैदा की, ये ना ये कोई माशुमा हम है कि भाई कोई शेख खुद कहे कि मेरे में तासीर पैदा होगी, मैं दवा है, या अल्लाह वाला खुद कहे कि मेरे में चीज़ पैदा होगी कर लेता हूँ मैं, या हर आदमी कहे कि मैं एक चीज़ पैदा करूँगा मुझ में ये चीज़ पैदा हो जाएगी, नहीं, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद एक ऐसा करंट दौड़ा दिया जाता है जिसको अल्लाह अपना महबूब बंदा बनाता है, प्यारा बंदा बनाता है, ताकि उस करंट के ज़रिए उस मैग्नतीस से तमाम लोगों को अल्लाह की तरफ खींचे। इसीलिए उस अल्लाह वाले की सोबत में इस तासीर जो अल्लाह ने पैदा की, किसने पैदा की है, किसने पैदा की है, याद रखें बिल्कुल, ये सेल्फ मेड नहीं होता है, सुना इसकी कोई डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं, बस ये अल्लाह ने तासीर पैदा की होती है, तो उसके असर ये होता है उस तासीर का कि एक लम्हा काफ़ी है, यक जबान सहबत है, इसके लिए दरकार नहीं कि 50 साल हों, 10,000 साल हों, एक सोबत यक जबान। इस पर बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं नबी करीम जबान मुबारक की कि हबशी रदी अल्लाह ताला वो ऐसी शख्सियत हैं कि अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक वो सबसे ही गिरे इंसान थे, जितनी तकलीफ़ आपको और अज़ियत नबी करीम को उनसे पहुंची किसी से नहीं पहुंची, ऐसी हस्ती थी वो। हुआ या कि वो आ गए, मदहमत हुई, जिंदगी हुई, अल्लाह का करम हुआ और मुँह छुपा छुपू के वो नबी करीम की सोबत में पहुँच गए। आप समझ पहचान तो गए, वाकया लंबा है, लेकिन वो तो रहमतुल्लाह आलमीन थे, कह दिया कि तू हबशी है, और उसके बाद आप पे गिरिया तारी हो गया, और वो जो वाकयात लिखा है कि इस कदर गिरिया तारी हुआ आप पर, इस कदर के सारे सहाबा जो थे हैरान हो गए कि क्यों आया, लेकिन क्योंकि वो तो रहमतुल्लाह आलमीन थे, उन्होंने कहा ठीक है तो ईमान के गज़ से आया है, मैं तुझे कबूल करता हूँ, लेकिन एक दरख्वास्त मेरी भी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे सामने ना आना क्योंकि तुझे देख के मुझे अपने चचा याद आ जाते हैं। बस ये एक सोबत थी हल्की सी, इसके बाद उनकी मुलाकात नहीं हुई नबी पाक से, मना कर दिया गया था, लेकिन इस हल्की की सोबत की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तासीर ये हुई। उज़्ज़गाने दीन लिखते हैं कि उनके मुकाबले में एक आशिक थे बहुत बड़े नबी पाक के, इतने बड़े आशिक थे कि अल्लाह के नबी ने खुद ही उनको अपना आशिक तस्लीम किया, खुद ही तस्लीम किया, और आपने फरमाया कि मेरे विसाल के बाद दो सहाबा को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला हज़रत अली को फरमाया कि तुम जाना उसके पास और उसे कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। अब इंतहा मोहब्बत इश्क नबी पाक उनसे था, उनको इतना इश्क था कि जो आप बड़ा मशहूर वाक़ा है कि अहद पर जब नबी दंदान मुबारक शरीफ शहीद हुए तो उन्होंने अपने सारे दांतों को तोड़ दिया। कितना बड़ा इश्क होगा आप ये देखेंगे, एक अजीब मिसाल है मोहब्बत की, कितने बड़े आशिक थे। लेकिन बुज़ुर्गाने दीन लिखते हैं कि अगर पूरी दुनिया, ये लफ्ज़ नहीं बता रहा हूँ, कि पूरी दुनिया अगर अब ऐसे करनी से भर जाए तो हबशी रदी अल्लाह ताला के मुकाबले में वो खाक भी नहीं है, क्योंकि सोबत से महरूम थे, जो सोबत की तासीर उनको मिली और उनको मिलने के बाद सहाबी बन गए, रदी अल्लाह ताला अन्हु हो गए। ये किस चीज़ की परख बताते हैं, सोबत की परख। ऐसी दूसरी मिसाल देते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ جو تھا وہ تو بڑا لڑائی جھگڑے کا زمانہ تھا, بدامنی کا زمانہ تھا, شور شرابہ بہت تھا, اختلافات بہت تھے, صحابہ میں بہت تھے. لیکن ان کے مقابلے میں حضرت عمر بن عبد العزیز تشریف لائے رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کا زمانہ تو عمر ثانی کہا جاتا ہے, ان کو تو بہت ہی گریٹ تھے, دیکھنے میں مقام بڑا بلند تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ سے کسی نے سوال کیا تھا ان دونوں میں کون بڑا ہو سکتا ہے, کس کا مقام بڑا ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پہ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ لڑائی فرماتے تھے, اس گھوڑے کی ٹاپ سے نکلی ہوئی خاک اس کی ناک سے ہوتی ہوئی بھی باہر نکلے تو اس سے بھی جو ہیں امیر معاویہ کا مقام ان کے مقابلے میں حضرت عمر حضرت عزیز کے مقابلے میں وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا, اس کے برابر بھی نہیں ہے, وہ ذرے کے برابر بھی نہیں, کیونکہ صحبت تھی آپ. تو یہ جو ہے صحبت کی تاثیر اتنی بڑی ہے کہ جب کوئی کسی اللہ والے کے پاس اللہ تعالیٰ بھیج دیتے تھے تو اس میں یہ گارنٹی مل جاتی ہے کہ اس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد یقینی ہے الحمدللہ کہ اس صحبت کی برکت سے جو اللہ نے اس میں پیدا کی ہے اللہ اس کو منزل تک ضرور پہنچا دیتا ہے, ضرور پہنچا دیتا ہے. لیکن اس کی مثال سننے, صحبت کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ صحبت مثال دیتے ہیں بزرگ, دیکھیں صحبت کے لیے بھی ایک چیز ضروری ہے, بہت ضروری, اس کو فائدہ پہنچتا ہے جو ایسی صحبت, جیسے چراغ ہے, چراغ میں بتی لگی ہوئی ہے, تیل نہیں ہے, آپ اس کو جلائیں گے تھوڑی دیر پھٹ پڑ ہوگا بجھ جائے گا, تیل سے جلتا ہے چراغ, تو چراغ بھی ہے, لائٹ بھی دی ہے, لیکن اس میں کیا نہیں ہے, تیل نہیں ہے, تو چراغ نہیں جل سکے گا. جہاں آپ تیل ڈالیں گے تو اتنا جلے گا کہ ساری رات روشن کرتا رہے گا آپ کو, آپ جگہ میں کرتا رہے گا, اور جب تک تیل ختم نہیں ہوگا تو چلتا رہے گا. تو فرمایا صحبت بھی ایسی ہو سبحان اللہ, کہ جس صحبت کے اندر مرید کے اندر سالک کے اندر چاہت اور محبت کا تیل ہونا چاہیے. اگر یہ محبت کا تیل نہیں ہے, اس میں چاہت نہیں ہے, اس کی خواہش نہیں ہے, اس میں طلب نہیں ہے, تو گویا اس چراغ کے مانند ہوگا کہ بتی تو ہے, بیٹھ تو رہا ہے, تھوڑی چنگاری لگ رہی ہیں لیکن ٹھپ ٹھپ کر کے پھر بجھ جاتا ہے. لیکن اگر اس میں چاہت کا تیل ہوگا اور اگر اس میں محبت ہوگی اور اس چاہت کے ساتھ جب جائے کہ بیٹھے گا کسی اللہ والے کے پاس صحبت میں بیٹھے گا تو یک زبانہ صحبت باولی. ایسے چاہے کتنا ہی کمزور ہو, کتنا ہی گناہگار ہو, کتنا ہی وہ کچھ ہو, لیکن چاہت کا اگر تیل اس کے اندر موجود ہے, اس کی دونوں مثالیں چلتی ہیں. حبشی کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں, ابو جہل پارٹی بھی تو تھی نا, اور دوسرے لوگ بھی تھے نا, لیکن بڑے 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 دشمن تھے, وہ تو آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے, رشتے داری بھی تھی, بیٹھتے بھی تھے, چلتے بھی, پھرتے بھی تھے, مسافر بھی ہوتے تھے, سامنے بھی آتے تھے, تھے یا نہیں, کیسے کیسے وقت معجزہ بھی دیکھے, سب کچھ دیکھے, لیکن وجہ کیا تھی؟ چراغ تو تھا, تیل نہیں تھا. لیکن حضرت حبشی جب چلے رضی اللہ تعالیٰ نے, تو وہ اس وقت چلے, اتنی اس کے باوجود بھی اس میں چاہت تھی اور محبت تھی کہ میں جا کے توبہ کر لوں, اللہ نے ایک سیکنڈ ان کو رضی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. کتنا انسان گناہ گار, لیکن اگر چاہت ہے, اگر محبت ہے, تو وہ صحبت اثر کرے گی. یہ اللہ نے ایک قانون رکھا ہے, ورنہ شیخ بھی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی لائٹ نہیں جلا سکتا اس کو, شاید ساری زندگی آدمی بیٹھا رہے, اس میں طلب نہیں ہے, چاہت نہیں ہے, لیکن اگر کتنا ہی کمزور ہو, کتنا ہی بیچارہ گناہ گار ہو, کتنی اس سے غلطیاں ہو رہی ہوں, لیکن ایک چیز میں موجود ہے, آئل ہے, تیل ہے, تو پھر اس کو صحبت بیکار نہیں کرے گی. اس کی بڑی اچھی مثال مولانا روم نے بھی دی ہے کہ ایک چینٹی تھی, بڑی کمزور بیچاری معصوم چینٹی, کیا حیثیت ہے, کچھ بھی نہیں, بہت دور بیٹھی بیچاری, پہاڑ دریا, اور اس کے دل میں خواہش ہو رہی, سب جانور تو جانور بولتے بھی سمجھتے بھی ہیں. انہوں نے اشعار کے اندر یہ بڑی خوبصورت مثال دی ہے, حتانی رحمۃ اللہ نے کتاب مواعظ میں اس کو بیان کیا اسی صحبت کے سلسلے میں. اب وہ بیچاری بہت کمزور, بس اس کو ہوبو کو چاہتے ہوگی کہ کس طرح बैतुल्लाह पहुंचो, तवाफ करो, उसकी चाहत उसकी बढ़ गई। जब उसकी चाहत बढ़ी, मोहब्बत बढ़ी, तो अल्लाह ने क्या वसीला पैदा किया, भेजा नहीं उड़ा के उसको। अल्लाह चाहे सब कुछ कर सकता, लेकिन तरीका वही इख्तियार किया असबाब का। तो क्या हुआ कि बैतुल्लाह से एक कबूतर उड़ता हुआ आया और उसने वहां दाना नजर आया जहां चींटी फिर रही थी, वहां बैठ कर दाना चुगना शुरू कर दिया उसने। जब उसने दाना चुगना शुरू किया तो चींटी समझ गई कि भाई कोई फॉरनर लगता है, तो बाहर का आदमी लगता है, चलो इसी का सहारा पकड़ो। और उसने पंजों में बैठ गई, उसके पड़ों में घुस गई, वो पंजे में बैठ गई। उसने दाना शाना खाया, उसने मारी बुड़की जनाब, उसने जाना था अपने घर, वो बैतुल्लाह पहुंच गया। जब वो बैतुल उतरा तो छोटी सी चौकी जो थी वो लब्बैक अल्लाहुम्मा कर लब्बैक कहते चक्कर काट। तो मिसाल ये थी कि देखिए कितनी कमजोर थी, कोई हैसियत ही नहीं थी, लेकिन चाहत मौजूद थी उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर की सोहबत मिली, कबूतर उसको लेके खाना खाओ में घुसा दिया। तो मेरे भाई ये तसव्वुफ बड़ी अजीब चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कीमती चीज़ है, बड़ी अजीब चीज़ है। इसमें अगर कहीं हमें कमी नजर आए, यार हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें असर नहीं हो रहा, या कुछ ऐसी बात नजर आए, कभी ना उम्मीद ना हो, कभी मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह का पता है वो रास्ता, और वो असबाब अख्तियार किए हैं हमने। आम किसी चीज़ किसी आम आदमी का बताया हुआ नहीं है, किसी वली का बताया ही नहीं, किसका बताया, अल्लाह का बताया रास्ता। ये मैं खुद दे रहा हूँ ये रास्ता, इस रास्ते को अख्तियार करो मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन बात है कि इंसान मुझ तक ना पहुँच सके। लेकिन एक चीज़ का जोर ख्याल रखना कि कमी वहाँ होगी अगर तुम्हारी चाहत में कमी होगी, तुम्हारी मोहब्बत में कमी होगी, तो कभी भी तुम अल्लाह की इताअत नहीं कबूल कर सकोगे, अल्लाह की मोहब्बत ना पा सकोगे, अल्लाह की मारफत ना पा सकोगे। अल्लाह नस्लों का हुब्बा हुआ हब्बा कल अल्लाह ने फरमाया कि मोहब्बत जरूर मांगना, अल्लाह से चाहत जरूर मांगना, हर नमाज के बाद मांगो अल्लाह ताला ये जो तुमने सबाब हमें दिया है, जो सबब दिया है, ये को अल्लाह मुझे तुमने शेख दिया है, या जो अल्लाह वाला दिया है तो यही रास्ता पहुँचने का। हजारों करोड़ों इंसान इस रास्ते से पहुँच चुके हैं, तो मैं क्यों नहीं पहुँच रहा, मेरे में क्या कमी है? तो कमी यही होगी इसमें, इसकी चाहत नहीं रहे, उसमें मोहब्बत की कमी है, उसके अंदर तलब खत्म होती जा रही है, नफ्स का कहीं वार चल रहा है हम पर। रास्ता फिर इसका इलाज क्या है कि रास्ता तरक ना करे, उसके बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं, भटक जाएगा मुस्कान दिन कहता भटक जाएगा, फिर तो शैतान को खुला रास्ता मिल गया। शैतान को जो है वो तो कामयाब हो गया, नफ्स जब घुसता है थोड़ा थोड़ा पानी की तरह, जब आता है किसी कमरे में किसी जगह सैलाब का पानी आता है तो एकदम दरिया का पानी नहीं आ जाता, जैसे पानी सैलाब आया है कहीं तो नहीं, आपको सच्ची बात कर रहा हूँ कि पानी पहले जो दरवाजे होंगे ना उसके अंदर से रिश्ता हुआ आएगा, फिर जो सुराख होंगे उसमें से रिश्ता हुआ आएगा, आस्ता आस्ता के पूरे कमरे में पानी भर जाएगा। तो जब उसको ये रास्ता मिल गया कि भाई बस मेरा काम चल गया, तो नफ्स और शैतान का जो वार होगा उस पर चलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ना करे तो फिर तो खसीट लेगा उसको, रास्तों से बिगाड़ देगा। अल्लाह के नबी की दुआ भी है कि अल्लाह ताला मैं पनाह मांगता हूँ इस चीज़ से कि मैं फिर पुराने हालत पे पलट जाऊँ और किसी फितने में गिरफ्तार हो जाऊँ, बड़ी मशहूर दुआ है। तो इसका इलाज क्या है कि जब ऐसी हालात आते हैं इंसान में, ऐसी बात हो जाए तो पहले क्या चीज़ समझ जाएगा, कुछ भी कमी नहीं है, कमी यह है कि मेरी चाहत, मेरी मोहब्बत, मेरे जोश जज्बे पे ना मेरे नफ्स ने और शैतान ने डाका डाल दी है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, छोड़ दूं रास्ता, खत्म कर दूं? नहीं, बल्कि क्या है, उस रास्ते को ना छोड़, चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन मैंने ये रास्ता छोड़ना नहीं, छोड़ूंगा नहीं, बेशक कुछ हो जाए मैंने इसी रास्ते पर रहना है, अल्लाह ने मुझे ये रास्ता बताया है और मैंने अल्लाह को पाना है। जाहिर है मेरी मौत अगर ऐसी हालत में आ जाए कि मैं अल्लाह को भूला हूं, अल्लाह मुझे भूला हुआ हो, तो फिर हाल क्या होगा मेरा। हाँ, अगर किसी भी जबर करके मैं बैठा रहूंगा तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्गान दीन कहते हैं कि कुछ अरसा ही नहीं गुजरेगा कि अल्लाह ताला उन मेहनत का जिसमें उसको तकलीफ हुई थी, नफ्स ने धोखे पकड़ा था, उससे भी ज्यादा सवाब अल्लाह अता फरमा देते, नज़त और करामात उसको अता फरमा देते अल्लाह ताला। तो ना उम्मीदी है ही नहीं इसमें, बिल्कुल भी नहीं। बस ये है कि अपने इंसान तजिया करता चलता है, समझ जाए कि मेरा रास्ता है और अल्लाह की फजल से रास्ते पर चलता जाए, अपने लिए दुआएं मांगता रहे और जो अल्लाह ने उसको किया है उस पर जमा रहे, जम जाए इस्तेकामत। इस बात लमूरा एक बहुत बड़ी दुआ अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाई है कि जो मैंने तुम्हें दिए इस बात उस पर, उन पर क्या है, इस बात कायम रहना, उस पर हिलना ना, कोई भी वसवस आए, कोई भी शैतान आए, कुछ भी है, क्योंकि इसके अलावा है नहीं चीज। मिसाल के तौर पर हम दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, जाहिर हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो हम दूसरा अल्लाह तलाश करेंगे कि भाई यहाँ से दुआ कबूल नहीं हो रही, चलो भाई अब चलते हैं मैनचेस्टर वाले खुदा के पास चलते हैं, फिर यहाँ नहीं हो रही चलो भाई बर्मिंगम वाले खुदा के पास चलते हैं। नहीं, हुक्म क्या है कि तुम अल्लाह से दुआ मांग रहे हो, मांगते रहो हो ना हो मांगते रहो, वरना फिर को दूसरा खुदा देख लो, अगर तुम तलाश कर सकते है तो खुदा ही की, अल्लाह तो एक है, उसके पास से दूसरा कहाँ जा सकता है। तो भाई रास्ता तो एक ही है अल्लाह को पाने का, मार्फत भी यहाँ से मिलेगी, मोहब्बत भी यहाँ से मिलेगी, अल्लाह की इताअत भी यहाँ से मिलेगी, गुनाह भी यहाँ से खत्म होंगे, तो इसी का छोड़ दें। सबसे बड़ी हिमाकत है वो तो शैतान जीत गया, बस उस रास्ते को हमने पकड़ा है, किसी अल्लाह वाले का साथ हमने पकड़ा है, हम तस्लीम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, हमने उस रास्ते को नहीं छोड़ा। हत्ता के बुजुर्गान दीन ये कहते हैं कि अगर ऐसा वसवसा भी आ जाए, शैतान ये भी डाल दे, वास्तव शैतान क्या करता है कि उस शेख की शक्ल के अंदर ना अजीब अजीब चीज़ें दिखाना शुरू कर देता है, उसको यकीन दिलाने के लिए कि भाई ये तो फजूल आदमी है, तू किसके पीछे लगा है, ख्वाब दिखाना शुरू कर देगा। ये टेस्ट होते हैं इम्तहान के, याद रखना, ये टेस्ट होते, उसको उड़ाना शुरू कर देगा, गलतियों तक तवज्जो देगा उसको। इस पर क्या कहते हैं पुराना दिन, कहते हैं सुभान अल्लाह, फरमाते हैं कि इसका तो इलाज ये है, सबसे बेहतर इलाज बातिनी इलाज है कि तुम उसके लिए दुआ करो, सुभान अल्लाह, क्या ताला इसको तो मैं नहीं छोड़ सकता, तो इसको ही सही कर दे, हम मैं कहाँ भागते हूँ, इसको तू सही कर दे, उसको पता है ये असल तो ये चीज़ नहीं, तो शैतान है जो मुझे बहका रहा है, मुझे दूर ले जा रहा है। ये बहुत अहम टॉपिक है कि अल्लाह ताला के हमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी ऐसे इंसान के पास भेज दे जो अल्लाह का महबूब और प्यारा बंदा हो, जिसके लिए हमें दुआ मांगते हैं, जब उस इंसान के पास भेज दे तो बस उस रास्ते को आदमी पकड़ ले अल्लाह के फजल से, लड़ता फिरता जिस तरह टूटा फूटा जिस तरह जितने भी हैसियत है अमल है जितने भी है, मैंने कहा चींटी की मिसाल है, नहीं कर सकते ज़्यादा ना करें, थोड़ा कर सकते हैं थोड़ा करें, कोई गुनाह हो रहा है गुनाह कर लें, मतलब उस रास्ते को नहीं छोड़ना, सोबत शेख को नहीं छोड़ना, पीछे कितना जिदकार है, उस पर यकीन मोहब्बत उस पर अगर पकी रही इंशाल्लाह तो चेंटी से ज्यादा कोई कमजोर नहीं हो सकता। अगर अल्लाह चेंटी को बैतुल्लाह की सैर करा सकता है तो हमें क्यों नहीं अपने मार्फत अता करेगा। तो बस अपनी हैसियत से इंसान अपनी जितनी उसकी इस्ताद है अभी ठीक है, हमें 50,000 बताइए, हम 50,000 नहीं कर सकते, हम 3,000 कर लें, 3,000 नहीं कर सकते, हम 1,000 कर लें, 1,000 नहीं कर सकते, 500 कर लें, 500 नहीं कर सकते, 100 ही कर लें, 100 ही नहीं करते 10 ही कर लें, सुबह शाम नहीं करते तो 100 ही कर लें, सुबह भी नहीं होती दोपहर में थोड़ा सा कर लें, दोपहर भी नहीं होता तो किसी और रास्ते में बैठ के कर लें। ये अल्लाह कहता ठीक है भाई लगा हुआ है अपने काम पे, चींटी जैसी मिसाल तो है, तलक ना कर, जो कोई पूछे क्या है कि रास्ता तो मेरा यही है, शेख भी मेरा यही है और रास्ता भी जिक्र अल्लाह का है। कोई आपसे नहीं पूछेगा कितना करता है, वो जिसने पूछा अच्छा आपका वो शेख का जिक्र भी कर रहा है, बस भाई अलहमदिल्ला इसका काम हो गया, गैर से कोई अल्लाह वाला आएगा फौरन हाथ उठा देगा अल्लाह ताला इसको कामयाब कर, और जहाँ उसने कहा नहीं ये मार तो फलां शेख तो हमने छोड़ दिया, अल्लाह वाले भी नाराज़ हो जाते हैं, कहते इंसान सही नहीं है ये, इसने अल्लाह की कदर नहीं कर रहा, कोई नहीं पूछता आप कितना कर रहे हैं, शेख भी कुछ नहीं कहता, उसे पता है भाई इसके हालात में बेचारा ये कर रहा है, 10 कर सकता है 2 कर सकता है, लेकिन उसका अकीदा मोहब्बत और यकीन अपने शेख से पक्की है, वो पक्की है, वो नहीं छोड़ सकता, जब भी बताएगा कि जी वही मेरा शेख है इंशाल्लाह उसकी दी तरबियत में चल रहा हूँ, फख्र से बताए नीचे होने की जरूरत ही कोई, बस अल्लाह को ये चीज़ पसंद है, और इसकी बड़ी बड़ी मिसालें हैं, बड़ी बड़ी मिसालें हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों की मिसाल हैं, बस एक चीज़ जिसमें सबसे बड़ी मुश्किल है, सबसे बड़ी मुश्किल कि किसी अल्लाह वाले को पा जाना, ये बहुत मुश्किल है, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये बड़ी मुश्किल, तो उसकी निशानी ये है कि जब कोई अल्लाह वाला आपको मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, आपको दिल आपकी गवाही दे देगा भाई आदमी सच है, उसके साथ आपने जाएंगे मतलब सोबत से पता लग जाएगा, एक सोबत से पता लग जाएगा कि भाई ठीक है अंदर मेरे पहुंच रही है कल जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दिल गवाही देगा उसी वक्त, क्यों अल्लाह की तरफ से ना सारा कुछ, या नबी जाकल मोमिना अल्लाह भेजता है, अल्लाह कहता है नबी मैं भेजाऊँ इस औरत को आप उसको तौबा करें, तो पता चलता है जब किसी अल्लाह वाले के पास आदमी जाता है तो कौन भेज रहा है उसको, अल्लाह भेज रहा है, ये अल्लाह के इंतजाम
हम आदमी की समझ नहीं है कि आदमी की मैं बताए कोई सिस्टम नहीं चलता है इसमें, अल्लाह भी चले। तो बहरा बड़ा अच्छा सबक था, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चलते चलते मेरे जहन में बात आई कि भाई मैं अपनी इस बैटरी को थोड़ा चार्ज कर लूँ। वो हजरत तो विशाल पा गए हैं, अब उनके मकतूबात हैं, जहाँ आप उनकी निशानी आप में बैठ के मैं भी अपनी बैटरी चार्ज कर लेता हूँ अलहमदिल्ला। उन्हीं की निशानी है आप सब निकला सिलसिला नक्शबंद की माशाल्लाह फैज़ है, अल्लाह का फजल है, करम है। इस दुनिया के अंदर में भी, इस हालात के अंदर भी हम बैठ के इतना बड़ा हल्का जिक्र का हो जाता है, कितनी बड़ी निशानी है ना पैर। यानी ये वो चीज़ है अल्लाह का जिक्र, अंदाजा लगे जो निशानी ने क्या बताई है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क़यामत उस वक्त आएगी जब ये जिक्र की मजलिस ख़त्म हो जाएगी तो पूरी दुनिया को इस जिक्र ने थामा हुआ है। यह चीज़ क्या बताती है कि अल्लाह सुबहाना ताला को सारे अमाल में से अपना जिक्र कितना महबूब है, कितना महबूब है कि जब तक जिक्र कायम रहेगा तो दुनिया को कायम रखूंगा, और जब देखूंगा जिक्र करने वाले चले गए कुछ नहीं रहा जिक्र में, दुनिया खाली है अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह कहेगा उठाओ इस दुनिया को। मैंने दुनिया को रखा ही था कि लोग मुझे याद करते रहते, तो एक भी नहीं इसमें, एक भी होगा तो अल्लाह कहेगा दुनिया को नहीं खत्म करूंगा। लेकिन बात बहुत बड़ी हदीस है, बहुत बड़ी हदीस है। एक आएगा ऐसा साल आएंगे 100 साल ऐसे आएंगे हदीस में आता है कि जब कोई जिक्र करने वाला नहीं है उसके बाद फिर क्या मत आ जाएगी, तो उस अल्लाह ताला इंतजार करेगा कोई जिक्र करे इस दुनिया के अंदर। क्यों सोचें आप ऐसा वक्त भी आ जाएगा, उसमें से कुछ निशानी तो हमें नजर आ रही, कहाँ उस जिक्र की मजलिस से मुझे बताएं, कितने कम होते हैं, कितने एक नापाक ना बिल्कुल नामुमकिन सी चीज़ है कि हम लोग अल्लाह के फजल से बैठ जाते हैं और फिर ये भी कमाल के सुबह शाम बैठ जाते हैं, और ये भी कमाल के फिर रोजाना ना किसी मस्जिद में घुसे होते हैं। ये अल्लाह का करम है, एहसान है, उसका फजल है। कई दफा मेरा दिल नहीं करता, मैं इंसान हूँ, फरिश्ता तो नहीं हूँ, छोड़ो यार क्या जाना थके हैं यार, कमर में दर्द हो रहा है आज तो यार, बहुत मुश्किल है जाना फना है, हजारों चीज़ें आती हैं, बीमार भी होता हूँ, मैं अपनी बात करूँ काफ़ी बीमारी और फिर नफ्स सुस्ती, देखो सुभान अल्लाह का करम से धक्का दे के फिर पहुँचा देता जिक्र ऐसे नहीं ना आदमी, फिर अल्लाह मदद करता है कि तू क्या डील डील कर रहा है, उठ ठंडा पड़ता है, बिल्कुल ठंडा हुआ बैठा हूँ बिल्कुल, और हाँ आज तो जिक्र नहीं होगा, बैठे आज क्या जाना यार बीमार है, पेट में दर्द हुआ सुबह से जाइए, तो एक्सक्यूज सही उधर है क्या जाना माँ, लोग कहते हैं कि हम नहीं आ सकते, ठीक है अल्लाह कहते मैं तुझे अभी करता हूँ सही, कैसे भेजता हूँ देख, पटाखे भेज देते हैं और मोहब्बत भी पैदा कर देते हैं। ये अल्लाह का भी ताल्लुक बनता है बंदे के साथ, तो सुस्ती तो चढ़ती है आदमी में, लेकिन वो बड़ा करीम हो क्या चीज़ देखता है कि इसके अंदर मेरी मोहब्बत मौजूद है, इसके अंदर मेरी ऑयल मौजूद है शख्स के अंदर, तो इसको मैं खुद इंतजाम करता हूँ, इसका वक्त ज़ाया नहीं करता। दुआ करें अल्लाह पाक हम सबको इस रास्ते पर कायम रखे, और बकौल हमारे हजरत अल्लाह के भी मौत के वक्त तक हम इसी हालत के अंदर जाएँ, बस अल्लाह से दुआ किया करें।